ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे श्रीमद्भागवतम स्कंध पंचम अध्याय नवम श्लोक संख्या 17 इति तेषां वृषलनम् रजस्तम प्रकृतीनां धानमदरज उस्तिक मनसां भगवत्कलाबीरकुलाम् कदर्थीकृतोत्पत्तेन शेर विहरतम् हिंसा विहरणम् कर्मातिदारुणम् यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षाद्ब्रह्मर्षिसुतस्य निर्विरेश्य सर्वभूतसुहृदा शूनायामपि अति अवलम्बनम् तदुपलब्ध ब्रह्मतेजसा अति दुर्विशेन दन्द्रमानेन वपुषा सहोच्चाट स देवी भद्रकाली शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ इति इस प्रकार तेषाम उन ब्रीशलनाम शूद्र का जिसने समस्त धार्मिक नियम नष्ट होते हैं राजा राजगुण तमा तमगुण प्रकृति नाम गुणों वाले धन मद संपत्ति के कारण उत्पन्न गर्भ राजा काम द्वारा उस्तिष्क फुला हुआ उन्मत्तो मनसाम जिनके मन भगवत कला श्री भगवान के अंश का विस्तार अंश स्वरूप वीरकुलम महान पुरुषों का कुल अत कृत अधिकृत कत अधिकृत अनादर करके उत्पत्तेन कुमार्क से शैरम इच्छा से विहरतम आगे बढ़ रहे हिंसा विहरणम जिनका कार्य अन्य पर हिंसा करना है कर्म कर्म कार्य अति दारुणम अत्यंत भयावह यत यो ब्रह्मभूतस्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न सर्वसिद्ध व्यक्ति साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्म ऋषि सुतस्य ब्रह्म ऋषि के पुत्र का निर्विदेश वैरहीन सार्वभूत सर्वभूत सुहृद शव का शुभचिंतक शूनायाम अंतिम क्षण में अपि यद्यपि अनुमुतम अभिहित आलम्बनम ईश्वर की इच्छा से विपरीत तत् वह उपलब्ध देखकर ब्रह्म तेजसा दिव्य आनंद के तेज से अति दुर्विषेण अत्यंत प्रखर अत असज्ज दंदमानेन जलित वपुषा शरीर से सहसा एकाएक उच्चचाट मूर्ति को विदीर्ण करके सा वह देवी एवं निस्संदेह देवी देवी भद्रकाली भद्रकाली। अनुवाद। जिन चोर उचकों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वे अत्यंत नीच थे और रज तथा तमगुण से बंधे थे। ये भगवान बनने की अजैव कामना से ओतप्रोत थे, अतः उन्होंने वेदों की आदेश का तिरस्कार किया। यहाँ तक कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न सर्वसिद्ध जीवात्मा जरभरत का वध करने के लिए उद्यत थे। देशवश वे उन्हें देवी काली के समक्ष बलि करने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्य में रत रहते हैं, इसलिए वे जरभरत का मारने का दुस्साहस कर सके। किंतु जरभरत समस्त जीव के परम मित्र थे, वे किसी के भी शत्रु ना थे और सदैव श्री भगवान के ध्यान में मग्न रहते। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था, अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक होते तभी उनका वध वर्जित था। किसी भी दशा में जार भरत को वध किए जाने का कोई औचित्य न था, अतः वह भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। वे तुरंत समझ गए कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं, अतः सहसा मूर्ति को विदीर्ण करके साक्षात देवी काली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर तथा असह्य तेज से जल रहा था। तात्पर्य। वैदिक आदेशानुसार केवल आक्रामक का वध किया जा सकता है। यदि कोई मारने के उद्देश्य से आए तो आत्मरक्षा हेतु उनका तुरंत वध किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई घर में आग लगाने या किसी की स्त्री को अपवित्र करने या हरने के उद्देश्य से आए तो उसका वध किया जा सकता है। भगवान श्री रामचंद्र ने रावण के समस्त परिवार का वध कर दिया, क्योंकि रावण ने उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया था। किंतु शास्त्र में अन्य किसी भी कार्य के लिए वध की आज्ञा नहीं है। देवता पर पशुओं की बलि अनुमति उन लोगों के है जो मांस खाते हैं। मांसाहार पर वो एक प्रकार का प्रतिबंध है। दूसरे शब्द में वेदों में कुछ नियमों के द्वारा पशुओं को वध का प्रतिबंध है। इन वादों पर विचार करते हुए यो कहा जाता है कि उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जरभरत की मारने का कोई औचित्य नहीं थे। वे सर्वसिद्ध थे और सभी जीव के शुभचिंतक थे। वेद के अनुसार चोर उचक को द्वारा जरभरत के वध किए जाने की आज्ञा नहीं प्राप्त होती। फलतः देवी भद्रकाली ईश्वर के भक्त की रक्षा हेतु मूर्ति में प्रकट हुई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि जरभरत का ब्रह्म तेज ऐसा था कि मूर्ति विदीर्ण हो गई। रज तथा तमोगुणी चोर उच्चक तथा ऐश्वर्य के प्रमत्त व्यक्ति ही देवी काली के समक्ष मनुष्य की बलि करते हैं। वेदों के द्वारा उसकी अनुमति नहीं है। इस समय पूरे विश्व में हजारों कसाई घर है जो ऐश्वर्य के पीछे दीवाने लोगों का संचालित किए जाते हैं। भागवत संप्रदाय द्वारा ऐसे कृत्यों का कभी भी अनुमोदन नहीं होता। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलां श्रीगुरुन् वैष्णवांश च श्रीरूपं शाग्रजातं सहगणा रघुनाथमितं तं सजीवं साध्वेतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश च। नमं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिण्ये नित्यानंद नमस्तभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलकलमशनाशयो जाहं विपते नमो नमः। नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताखं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयताम श्रुतरपंग मन्नमतिर्गति मत्सर्वस्वदम्बुज राधा मदनमोहन। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागर सिंहासन स्थित श्रीमन राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठालि विशिव मन स्मरामि। श्रीमन राश रसारंभी वंशीवरतर स्थित कर्षन वेणु शनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीहस्त नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैंने भगवान श्री राधा राजवी के चरण कमल में प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के चरण कमल में, तत्पश्चात निताय गौर सुंदर के चरण कमल में मेरा चरण प्रणाम अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात सभी वैष्णव से मेरा कृपा याचना है कि मैं भगवान की विषय के कुछ बोल सकूँ। आप लोग कृपा आशीर्वाद कीजिए। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत निर्मत्सर मनुष्य के लिए है। हम तो अभी तक निर्मत्सर नहीं हो सके, तो आप लोग कृपा कीजिए। वैदिक शास्त्र में बताया गया कि भरत के नाम से भारतवर्ष का नाम हुआ है। इसमें तीन भरत का नाम आता है मुख्य, तो जो राजा राजपुत्र थे और राजा भी हुए बाद में, जैसा कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज, उसके बाद राजा दुष्मंत के पुत्र महाराज भरत, तत्पश्चात जो है भगवान श्री रामचंद्र के भ्राता भरत। ये तीन भरत का नाम से भारतवर्ष का नाम हुआ है। अगर यहाँ पे जो भरत है, ये देखिए तीनों भरत से अलग है ना, कोई राजपुत्र है, वही राजपुत्र है दोबारा जन्म लिया है, ना कोई राजा है, ना क्षत्रिय है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए है भरत, जर भरत, जो भगवान के अनन्य भक्त। जार चित्त होया छे कृष्ण प्रेमदाय तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाई। जार भरत रात्रि में खेतों का पहारा कर रहे थे कि कुछ जंगली जानवर शोर आके खेत ना खाए। देखिये मूलत तो बताया जाता है कि ब्राह्मण जो है वो कृषि नहीं करता है, और यहाँ पे देखा जाए कि जार भरत ब्राह्मण के पुत्र है, उनका पिता का कुछ खेती था, उनके ज्येष्ठ भ्राता ने उनको आदेश दिया कि जाओ खेत को पहरा दो। तो ब्राह्मण कुमार आदेश का पालन करते हुए कि खेत का पहरा दे रहे थे, और जो है उनको डाकू के सैनिक ने आज्ञा दिया, हमको नरबलि देना है, किस लिए? हमारा पुत्र प्राप्ति के लिए। तो जो बोली पकड़ के लाए थे वो बोली भग गए। तो रात के अंधेरा में ढूंढते ढूंढते एक उनको बहुत हट्टे गट्टे नौजवान मिले, जिनका ब्रह्म तेज शरीर के मलिनता कारण ढके हुए थे। इस प्रकार जर भरत को उठा के लाए। तो जर भरत देखिए, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, लज्जा घृणा भय तीन थाकते कृष्ण भक्ति नाय। तो जर भरत को आत्मा स्तर में स्थित है, उनकी क्या भय है, उनको कोई लाज भी नहीं। देखो रात को कोई थोड़ी जा पहरा करता है, उनको घृणा भी नहीं है कि हमारा जो ज्येष्ठ भ्राता और बाकी सगे संबंधी हमको इस प्रकार कभी भूसा खाने देता है, कुछ भी खाने के देता है, उनको घृणा नहीं है, उनके प्रति द्वेष भी नहीं है कि ये हमारा प्रति ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ये भक्तों की गुण है, लज्जा घृणा भय तीन थाकते कृष्ण भक्ति नाय। तो इनका पास ये सब कुछ नहीं था, क्योंकि ये देहोस्मृति ना हजार संसार बंधन कहा था। उनको तो देहोस्मृति था ही नहीं कि वो देह है नहीं, उनको मालूम थे कि मैं सर्वशुद्ध आत्मा हूं। और जो महाभागवत होते हैं उनको पूर्व जन्म का याद भी आता है, तो इनको याद था कि पूर्व जन्म में राजा था, उसके बाद मैंने तपस्या करने गया था, मैं भ्रष्ट हो गया हूं, मेरे को मृग शरीर मिला था, अभी ये मनुष्य शरीर मिला मेरे को, ये मनुष्य शरीर मेरे को गवाना नहीं, इस शरीर में हमको भगवान के पास वापस जाना है। तो उनको कोई भय नहीं था, उनको पकड़ के लेके गए डाकुओं ने, अच्छा से रखे, उनको अच्छा से नहलाए, और उसके बाद बोली के लिए लाए गए देवी के सामने। जब देवी के सामने बलि के लिए ला गए, तो उसी के ऊपर आज के ये श्लोक है। श्री राधराज मेरी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, स्मिताई गौरचंद्र भगवान की जय। तो जो चोर उच्चक होते हैं, उनको दूसरे का संपत्ति, दूसरे को वध करना, उनके लिए कोई ये सब मामूली बात है। देखिए इसी प्रकार एक विवरण आते हैं जी कि जो ब्राह्मण होते हैं उसको वध किसी भी तरफ से नहीं किया जाता है। तो कुरुक्षेत्र युद्ध में दिखाया जाता है कि युद्ध का अंतिम समय में, अंतिम नहीं हुआ अभी तक, तो अश्वत्थामा ने पांडव के पांच पुत्र को मार दिया, पांडव के पांच पुत्र को मार दिया, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, तो भीम बोल रहे इसको तुरंत शरीर से इसका सर अलग कर दो, द्रौपदी क्या बोल रही है, नहीं इसको मारो मत, क्योंकि ये हमारा गुरु के पुत्र है, ब्राह्मण है, इसको मारने से तुम्हारा ब्रह्महत्व का पाप लगेगा। और तो और जो वैष्णव होता है वो परम कृपालु होता है, दयालु होता है, पर दुखी दुखी होता है। द्रौपदी ये बोल रही थी कि मेरा पांच पुत्र चले गए, इसको मार के तो मेरा पुत्र वापस नहीं आएगा, और किसी स्त्री को मैं पुत्रहीना नहीं देख सकता हूं, मेरा अंदर जो दुख हो रहा है ऐसा दुख और किसी को ना हो। ये ब्राह्मण का गुण होता है, वास्तविक कृष्ण भक्त का गुण होता है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को दुखी दुख नहीं देना। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं, महत्मानास्तु माम पार्थो देवीम प्रकृतिम आश्रिता। जब महात्मा होते हैं उनको देवी प्रकृति में आश्रित होता है, भगवान की देवी शक्ति उनका रक्षा करते हैं। तो यहां पे वो तो आत्मिक स्तर पर है नहीं, जरभरत तो अपने रक्षा के लिए कुछ प्रबंध नहीं किया, मगर देवी भद्रकाली देख रहे कि भगवान के महान भक्तों को लोग बलि दे रहा है, ये सहन नहीं हो सका, मूर्ति फट गई है। और मूर्ति फाट के देवी प्रकट हुआ, तो देवी का शरीर क्रोध से जल रही थी। तो ये भगवान के भक्तों की रक्षा की है, ये देवी प्रकृति में रक्षा होते हैं। और इसमें बताया कि जो वैदिक आदेश के अनुसार केवल आक्रमक का वध किया जा सकता है, जो आक्रमण करते हैं उनको वध कर सकते हैं, और भगवान के भक्त तो जो जो शरीर पर स्थित नहीं है उनके लिए कुछ आक्रमण कुछ अंतर नहीं पड़ता है कि उनका पर आक्रमण हो रहा है। जैसे कि प्रहलाद महाराज देखिए, उनको पहाड़ से फेंका गया है, उनको कोई भर नहीं है, भय नहीं है, निरर है, उनको तप तो तेल में डाला गया है तभी भी उनका कुछ नहीं हुआ, उनको आग में जलाने का प्रयास किया गया था तो कुछ नहीं हुआ। तो आक्रामक जो वो होता है जो हिंसा के स्तर पर आक्रमण करता है उसको बात किया जा सकता है, और आत्मरक्षा के हेतु मगर भगवान के भक्त जो होता है परम भक्त वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है, अपने किसी भी सगे संबंधी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। देखिए उत्तरा के जब अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र के बाद भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे, और उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मगर उत्तरा किसी के पास नहीं गई, उनके जो ससुर सब एक एक महान वीर भीम अर्जुन किसी के पास नहीं गई, उन्हें डायरेक्ट भगवान कृष्ण के पास गई कि रक्षा करो। तो भगवान के भक्तों सदैव भगवान के ऊपर निर्भरशील होते हैं। हाँ, तीन प्रकार मनुष्य को तुरंत मारा जा सकता है, जैसे कि किसी ने घर में आग लगा दिया, किसी ने पराई स्त्री का वध का मतलब अपवित्र करने का प्रयास किया। जो देखिए कीचक, कीचक ने द्रौपदी को अपवित्र करने का प्रयास किया था, भीम ने तुरंत उनको वध कर दिया, इसमें कोई अपराध नहीं है। तो कुछ परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है। और देवता के ऊपर जो पशु बोली है ये उन मनुष्यों के लिए है जो मनुष्य सत रजोगुण में स्थित होकर अपने आप को भगवान मानने का या तो बड़ा होने का भौतिक दृष्टि से प्रयास करता है, तो वो लोग कुछ मन्नत करते हैं, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको पशु बलि के साथ पूजा दूंगा। ऐसा एक बार हुआ था कि भगवान नित्यानंद नवद्वीप में विहार कर रहे हैं, उनका शरीर में बहुत सारे गहना मुक्ता का हार वाला बहुत कुछ पहना हुआ है। वो देख के एक नवद्वीप के ब्राह्मण कुमार जो डकैत के सरदार थे वो उनको हरने का प्रयास कर रहा था, और देखिए उनका दुस्साहस क्या है, मायाधीश भगवान नित्यानंद के साथ वो माया करने का प्रयास कर रहा था, वो छल से मतलब उनके साथ दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है, उनका साथ घूम रहा है, भक्त बनने का ढोंग कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु इसको समझ लिया है कि ये किस लिए मेरा साथ आ रहे हैं, भगवान तंत्रजामी है और मायाधीश भगवान के साथ वो माया से मतलब छल से घूम रहा है। तो एक बार नित्यानंद प्रभु बोला ठीक है इनको मैं भी कुछ अपना दिखाऊं। तो नित्यानंद प्रभु कुछ दिन के लिए सब संगी को छोड़ के कुछ सीमित भक्त को लेके हिरण्य पंडित का घर में आश्रय लिया, हिरण्य पंडित का घर में नित्यानंद प्रभु रह रहे, संकीर्तन को थोड़ा बंद करके कुछ भक्त का साथ रह रहे, तो डकैत के जो सरदार है बोला अच्छा मिला है चंडी माता, ये हिरण्ना पंडित का घर पे है, वहां पे निर्जन स्थान है, वो तो कभी भी मैं हर के लाऊंगा एक दंड में। तो एक दिन सब डकैत एक स्थान में एकत्र हुए, उसके बाद एक चोर को भेजे, बोले जाओ जाके देखो क्या कर रहे है। तो जाके देख रहे कि नित्यानंद महाप्रभु भोजन कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु और बाकी भक्त लोग हरिनाम कर रहे हैं, सब लोग प्रेम में उन्मत्त है, कृष्ण प्रेम में, और सब लोग जगे हैं। तो चोर आके बोल रहे कि सब लोग जगे हैं और नित्यानंद भोजन कर रहे अवधूत। बोले डकैत के जो सरदार है, बोला ठीक है कुछ समय रुको, सब लोग सो जाएगा उसके बाद हम हना देंगे, हम लूट के लाएंगे। तो कुछ समय रुक गया वो लोग एक स्थान में, जब रुका है तुरंत निद्रा देवी उनके ऊपर भर गया, सब लोग सो गए। जब सब सो गए और सुबह जब कौवे की आवाज आया पक्षी का, तब सब लोग जागे, और जागने के बाद एक दूसरे को दोष दे रहा है, तूने पहले सो गया, तू पहले सो गया। वो बोलता तू पहले सो गया, तो सरदार बोल रहे अरे चुप करो, अभी झगड़ा करके कुछ फायदा नहीं है, हम लोग चंडी की पूजा नहीं किया इसलिए हमारा चंडी हमारा पर मतलब कृपा नहीं किया। तो लोग ठीक है, उसके बाद चंडी की पूजा किया, बहुत बलि के साथ जाग जग के साथ चंडी पूजा किया। चंडी पूजा करने के बाद वो लोग अब फिर गए, कुछ दिन बाद गए, जाने के बाद देखे कि नित्यानंद प्रभु हिरण्य पंडित का घर में आराम से सो रहे, सब भक्त लोग सो रहे, मगर हिरण्य पंडित का घर जा जो घर है उनका चारों ओर सब बड़े बड़े सैनिक चौकीदार घूम रहा है, और एक एक चौकीदार 100-100 डकैत को एक निमिष में मार सकते हैं, इतना सब लोग हट्टा गट्टा ताजे सब लोग। तो ये लोग आके बोल रहे अरे ये पाई कहाँ से लाया है, जरूर कोई राजा महाराजा से भेंट करने के लिए आए हैं, उनका ही पाई को मंगा के लाए हैं। और कोई बोल रहे नहीं अवधूत है ना, ये बहुत महान है, ये अपने आप को रक्षा कर रहा है, इनका क्षमता है। और कोई बोल रहे नहीं ये भालमंद खाता है, बहुत गहना पहनता है, कैसा कौन सा गोसाई है, गोसाई नहीं है। तो बोले ठीक है ये चौकीदार को जाने दो, 10-20 दिन और रुक जाओ। तो 10-20 दिन और रुक गया, रुकने के बाद क्या हुआ, फिर कुछ दिन बाद ये लोग गए, जाने के बाद देखा कि हाँ चारों ओर बहुत अंधेरा है, सुमसाम है, तो सब लोग प्रविष्ट हो गए बारी भेतोरे मतलब घर के अंदर सब लोग घुस गए। जैसे ही घुसे सब लोग अंधे हो गए और कोई वहां गिर रहा है, गढ़ खाए मतलब जहां पे गाय बैल को खाने के लिए जाए वहां पे गिर रहा है, कुछ लोग वो झूठा जहां फेंकते हैं वहां गिर गए, कुछ लोग कांटे का ऊपर गिर रहा है, सब लोग जो एक डास होता है मच्छी से मक्खी से बड़ा बड़ा एक होता है वो काट रहा है, सब जो काट रहा है सब लोग मतलब बहुत पीड़ित है। और उस समय इंद्रदेव ने बहुत बारिश बरसाई, शिलावृष्टि जब बरसाए तो एक तो ये लोग ये जो कीट पतंग के कमरे से जो काटे है इससे इसका दर्द से आधमरा हो गया, उसके बाद फिर बारिश शिलावृष्टि सब लोग वहां पे मतलब सेंसलेस हो गया, अज्ञान हो गए सब लोग। उसके बाद सुबह हुए तो सब लोग किसी प्रकार से उठे, उठ के गंगा के स्नान करके आए, गंगा से स्नान करने के बाद वो लोग सब नित्यानंद प्रभु के पास आए। सरदार को इसमें थोड़ा स्मरण आया कि अवधूत जो है ये कोई नौर नहीं है, ये साक्षात भगवान है, तो हम इनसे जीत नहीं सकते, हमको इसका शरण में जाना चाहिए। तो सब लोग गंगा स्नान के बाद आए और सब नित्यानंद प्रभु के चरण में गिर गए। नित्यानंद प्रभु के चरण में गिर गए, नित्यानंद बोला क्या हुआ तुम्हारा, क्यों आज इतना नाच रहे हो और सब इतना नरम हो गए हो। बोले प्रभु हमको रक्षा कीजिए। तो भगवान ने सबको कृष्ण प्रेम दिया है नित्यानंद प्रभु। तो वैष्णव जो है किसी प्रकार से वैष्णव को दर्शन भी होता है, उनका संग होता है तो लाभ ही लाभ होता है। वैष्णव का दर्शन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारे गुण। तो इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की कृपा वो लोग को प्राप्त हुआ। और यहाँ पे ये जो चोर उचक को काली बध करके इनका पाप को, जो और पाप करता था उसको बंद करवा दिया। और ये लोग जैसे कि महान भक्त का दर्शन किया है, तो भगवान के जो भक्त का दर्शन वो किसी प्रकार से लाभ ही होता है, लाभ के बिना हानि नहीं होता है। ऐसा ही एक प्रसंग आता है जैसे कि श्रीमद् भागवतम में, भगवान के नाम आप किसी भी प्रकार से लो, संकेतम परिहासम स्तोभनम हेलने बबा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरम विदु। जो व्यक्ति भगवान के नाम संकेत से ले रहा है, कोई लोग बोलता है ए हरे कृष्ण वाला है, कोई पीछे से बोलता है इसका चिट्टी है ना हरे चोटी है हरे कृष्ण वाला है, तो कोई संकेत से नाम ले रहा है, कोई परिहास करके अरे ये तो ढोंगी साधु है हरे कृष्ण वाला, तभी कोई स्तोति करके लेता है कोई। तो किसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान नाम का कीर्तन करता है वो तुरंत असीम पाप के फल से मुक्त कर दिया जाता है, भले ही वो कीर्तन आप प्रत्यक्ष रूप में कुछ और संकेत करने के लिए करते हैं तो, और संगीत में मनोरंजन करने के लिए करते हैं, जैसा कुछ लोग बोलते दम मारो दम हरे कृष्ण हरे राम तभी पुण्य मिलता है, प्रभुपाद बताए इसे डरने का नहीं। तो किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लेते या भगवान के भक्त का संग करते उसका लाभ ही लाभ होता है। देखिए हमारा आज तो बहुत पवित्र दिन है, आज के दिन ही 1966 में न्यूयॉर्क में 26 एवेन्यू में ये अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ हो इस्कॉन का प्रतिष्ठाता हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। ये इस्कॉन जो संस्था है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रचार। अरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शुरू होता है, देखिए आज से लगभग 500 साल पहले जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट कोई गोस्वामी, जो तीन गोस्वामी ये धराधाम छोड़ के चले गए, तीन जन बचे हैं जीव सनातन, जीव गोस्वामी सनातन जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी और शायद रघुनाथ दास गोस्वामी, ये तीन जन थे। ये तीनों का निर्देश हुआ कि आप लोग जाओ बंगाल और उड़ीसा में इस ग्रंथ को वितरण करो, तीनों को निर्देश दिया तीन साथ में, कौन, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, तीन आ रहे हैं ग्रंथ को लेके, बैलगाड़ी में ग्रंथ लेके आ रहा है कहाँ, बंगाल उड़ीसा की तरफ, गाड़ी है उसके साथ बड़े बड़े पेटी में सब बुक्स को बांधा गया है और गाड़ी के रक्षक भी है। गाड़ी जब वन विष्णुपुर में प्रवेश हुआ, वन विष्णुपुर वहां पे जो राजा है, राजा खुद ही डका थे दस्यु दलपति, उनका नाम बीर हमबीर, तो राजा बीर हमबीर को ये चौरों से संदेश प्राप्त हुआ कि बहुत बड़े बड़े पेटिका में कुछ आए हैं और साथ में कोई ज्यादा बड़ा सेना वाना नहीं है, छोटा छोटा दो चार रक्षक है और दो तीन साधु है, जिसको हम लूट ले। तो रात्रि में उस गाड़ी को लूटा गया है, ग्रंथ का गाड़ी को वन विष्णुपुर में बीर हमबीर ने लूट लिया, गांव के लोग बताए कि ये बीर हमबीर इसको लूट लिया। तो बीर हमबीर जब गाड़ी को लूट लिया तो वहां पे श्रीनिवास आचार्य ने नरोत्तम दास ठाकुर को बांग्लादेश खेतरी भेज दिए और श्यामानंद प्रभु को ओडिशा, और वो ग्रंथ का उद्धार के लिए वहीं रुक गए हैं। ग्रंथ का उद्धार के लिए रुक गए हैं तो उस वन विष्णुपुर में वो रहे हैं। वन विष्णुपुर में कुछ वैष्णव एक्चुअली वहां से पहले से ही थे, कुछ वैष्णव थे। वो वैष्णव जो है उसमें एक लोग एक व्यक्ति ने उनको देख के उनका शरण ग्रहण किया है। किनका? श्रीनिवास आचार्य का। उनका नाम कृष्ण वल्लभ। तो कृष्ण वल्लभ को उनको दीक्षा दिया और कृष्ण वल्लभ बताए कि ये जो वीर हम वीर दस्यु दलपति ये भागवत का श्रवण करता है। तो भागवत का श्रवण करता है। इस बीच में एक दूसरा हुआ कि जैसे ही पेटी का लुंठन हो गया तो वीर हमीर का घर पे लेके गया है। वीर हमीर जब खोला उसको, खोल के देखा कि ये जो रत्न तो है, वास्तविक रत्न यही है कि भगवान के वाणी ग्रंथ, और इस ग्रंथ किसका लिखा है? रूप गोस्वामी पाद के। देख के ही उनका मन में जो कलमस था, जो पाप करने का विचार, वो ग्रंथ को देख के ही वो दूर हो गए, उनका हृदय में शुद्धता है। ये देखिए वैष्णव का हस्ताक्षर देख के। तो उसके बाद जब श्रीनिवास आचार्य बीरहांबीर का घर पे गए तो बीरहांबीर साष्टांग दंडवत किया श्रीनिवास आचार्य को और सारे ग्रंथ उनको लौटा दिए। क्यों? कि देखिए ये वैष्णव दर्शन का फल है। वैष्णव दर्शन से केवल जीव का जो पाप होता है वो कम हो जाता है, मुक्त हो जाता है जीव। तो ये और तुरंत उन्होंने, और ये भी दैववाणी हुआ, रात को जब वो सोए थे तो सपने में आया कि वीरहांबीर तुम चिंता मत करो, जिनका ग्रंथ है ये तुरंत तुमसे मिलने के लिए आएगा और तुम जन्म जन्म में हो यो तहार किंकर, तुम जन्म जन्म के उनकी सेवक बन जाओ। ये रात में स्वप्नादिष्ट हुआ भगवान द्वारा। तो उस समय वीरहांबीर ने पूरा एकदम समर्पण कर दिया श्रीनिवास आचार्य को। तो श्रीनिवास आचार्य को समर्पण कर दिया। ये वैष्णव दर्शन और वैष्णव के संग का फल है। और एक है कि व्यक्ति कुछ भी करे जब तक वैष्णव सेवा, ये वैष्णव के दर्शन नहीं करता है, उनका जो शरीर के कलमश मन के कलमश दूर नहीं होता है। इसी शायद अगला अध्याय में जर भरत महाराज रोहुगण को उपदेश दे रहा है। रोहुगणे तपसा न जाति न चैज्जया निर्वपनाद गृहाद बा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। रोहुगण तुम कुछ भी तपस्या करो, तपस्या करके किसी का मन का कलमश दूर नहीं होता है। और वृकासुर भी तपस्या किया था, उनका मन का कलमश दूर नहीं हुआ। रोहुगण तपस्या न जाति न चैज्जया, पूजा करके भी किसी का मन का कलमश दूर नहीं होता है। न निर्वपनाद गृहाद बा, कोई ब्राह्मण वस्त्र लिया उससे भी मन के कलमश दूर नहीं होता है। कोई गृहस्थ जीवन जी रहा है उससे भी मन का कलमश दूर नहीं होता है। तो कैसे होता है? बिना महत्पाद रजोभिषेकम्। जब तक कोई भगवान के अन्य भक्त का सेवा नहीं करते तब तक उनका मन का कलमश दूर नहीं होता है। तो जर भरत जो महाराज भरत, उनका मन का कलमश दूर हो गया था शुरू में ही, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त है, भगवान ऋषभदेव का आज्ञा का पालन किया है। ऋषभदेव का आज्ञा का पालन किया है तो तभी उनका कलमश दूर हो गया था। तो भगवान के कुछ परिकल्पना थे कुछ। वास्तविक जर भरत का, जो महाराज भरत का पतन नहीं हुआ था, ये कुछ दृष्टांत के अनुसार दिखाने के लिए भगवान कभी कभी कुछ भक्त को कुछ रोल निभाने के लिए देते हैं। और जो महान भक्त होता है उनको पूर्व जन्म का स्मृति आते हैं। देखिए नारद मुनि पहले एक गंधर्व थे, उसके बाद वो दासी पुत्र बने। दासीपुत्र बनने का बाद वो महान भक्त को सेवा किया। भगवान के जो चातुर्मास में रत थे अनन्य भक्त, उनका सेवा करने से उनका और चित्त शुद्ध हो गई। चित्त शुद्ध होने के बाद उन्होंने जब शरीर त्यागा दूसरा शरीर में, वो नारद मुनि हुए हैं। ये महाभागवत जो होता है उनको ये पूर्व जन्मों का स्मृति आते हैं, बाकी जो साधारण लोग हैं उनको पूर्व जन्मों का स्मृति नहीं आते, क्योंकि उनका जो बुद्धि है रजगुण तमगुण सतगुण में ही घूमते हैं। तो भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहा है, त्रैगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्यस्थ निर्जगक्षम आत्मवान। अर्जुन तुम मत समझो कि ये तुम्हारा भाई साले संबंधी, तुम्हारा ससुर मामा, ये इनको मत मारो, मैं मारूंगा नहीं। ये तीन गुणों के आधार पर विचार है, तुम ये तीन गुण को गुण से ऊपर आओ, निस्त्राय गुण बाबो, तीन गुण से ऊपर। जो तीन गुण से ऊपर जाता है मनुष्य वो द्वंद्व रहित होता है। यहां पे बताया कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जर भरत को मारने का कोई औचित्य नहीं थे, क्योंकि ये सर्वसिद्ध थे, ये तीन गुण से ऊपर और सभी जीवों के शुभचिंतक। जो तीन गुण से ऊपर आता है सभी का शुभचिंतक होता है, और अजात शत्रु होता है, उनका कोई शत्रु नहीं होता है, वो कभी किसी को शत्रु मित्र भाव से देखते भी नहीं। तो वो वेद के अनुसार वो किसी भी परिस्थिति में, जो वेद में भी जब अगर बात जाएंगे तो उसी प्रकार उस स्थिति में भी जरभरत को मारने का कोई मतलब प्रश्न ही उठता है, और प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि वो कोई अपराध किया ही नहीं, उनका स्वार्थ सिद्धि के लिए ये मार रहा है। तो यहां पे देवी भद्रकाली ईश्वर की भक्त की रक्षा के हेतु जो तीन गुण से ऊपर है कृष्ण प्रेम जिनका शरीर मुद्दा है उनको ही देवी प्रकृति रक्षा करते हैं, बाकी जीव को देवी प्रकृति रक्षा नहीं करते। तो देवी भद्रकाली ईश्वर के भक्त की रक्षा हेतु मूर्ति में प्रकट हुए। और यहां पर विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बता रहे कि ये ब्राह्मण कुमार थे, तपस्वी थे, इनका ब्रह्म तेज से मूर्ति फट गई, क्योंकि भक्त जो होता है देवता लोग भी चाहते हैं कि हम भक्त बने, अच्छे भक्त बने, कि देवलोक में मिश्र भक्ति होता है, ये मनुष्य शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। भारत भूमि तो हिलो मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करो करी परोपकार। तो देवता भी चाहते हैं कि इस भारत भूमि तो जन्म हो मेरा। तो यहां पे मूर्ति फट गई क्योंकि वो सातवा राजा तमगुण चोर उच्च ऐश्वर्य। और देखिए श्री विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि इस प्रकार ब्रह्म तेज से मूर्ति विदीर्ण हो गई। चोर राजा तथा तमगुणी चोर उच्चक्य तथा ऐश्वर्य से प्रमत्त व्यक्ति ही देवी काली के समक्ष मनुष्य की बोली करते हैं, शतगुणी मनुष्य कभी बोली नहीं करते हैं। वेदों के द्वारा इसकी अनुमति नहीं है, वेदों में ऐसा कोई अनुमोदन नहीं है। इस समय देखिए, इस समय पूरे विश्व में हजारों कसाई घर है जो ऐश्वर्य के पीछे दीवाने लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो मनुष्य पहले ये लोग मांस नहीं खाते थे, और अभी लोग मांस खाना चालू कर दिया। जब साधारण मनुष्य में कुछ अर्थ उपार्जन होता है, अर्थ रहता है, तो लोके आमिष बबया मद्य सेवा, ये तीन चीज तुरंत पकड़ लेते उनको, अगर वो शतगुण में स्थिति नहीं है तो। कि आमिष भोजन करना, बबया परस्त्री संग करना, और मद्य सेवा। जब मनुष्य रज तजगुण रज और तमगुण में मनुष्य के पास बहुत धन होता है, तब ये तीन वस्तु अपने आप आ जाता है संग देने के लिए, क्योंकि वो जो रजो तमगुण से कमाए हुए पैसा, मतलब उसमें शतगुण नहीं है, उसमें पाप का ही पैसा है, तो उसमें ये सब दुष्ट प्रवृत्ति अपने आप आ जाते हैं। यह बात है कि ऐश्वर्य के पीछा नहीं दीवाने लोग, कि मनुष्य को मालूम ही नहीं है, वो लोग के पीछे ये सब आता है, जो मनुष्य क्या मालूम नहीं है। न ते विदु सार्थ गतिम ही विष्णु दुराशय बहिर्थ मानिना अंधा यथा अंधे रूप नियमाना तेयपि स्वतंत्रा मुरुद्धान विबद्धा। वो मनुष्य के मालूम नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। न ते विदु सार्थ गतिम ही विष्णु, मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य की विष्णु को प्राप्त करना, अंति नारायण स्मृति। दुराशय जो बहिर्थ मानना, बाह्य जो वस्तु है, ये जो अपने कई तरह का नाम फेम ग्लोरी, ये बाह्य वस्तु है, ये शरीर के साथ साथ समाप्त हो जाएगा। अंधा जथा अंधे रूप ने माना, उस प्रकार मनुष्य अंधा को गुरु बनाते हैं। वो क्या बोलते हैं गुरु, बोलते हैं हमने गुरु कर लिया है, गुरु फैशनेबल गुरु, गुरु कर लिया है। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं गुरु से मंत्र प्राप्त हो गया, मतलब वो तार कनेक्टेड हो गया, तार से शक्ति आ रहा है। तो ओ मतलब अंधा जो गुरु खुद ही नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य क्या है, अंधा गुरु अंधा शिष्य क्या उपदेश देगा। अंधा जैसा अंधे रूप में बना, ते अभी स्वतंत्र अमृतदान में अंधा। वो मनुष्य इस संसार में ईश भगवान बनने चाहता है और कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो मगर भागवत संप्रदाय में ऐसे कृतो का कभी अनुमोदन नहीं किया। कसाय घर चलाना और जो चार दुष्कर्म है, ये भागवत संप्रदाय में नहीं है। भागवत संप्रदाय में क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या बताते, भालो ना खाइबो और भालो ना पोरिबो। चैतन्य भक्तगण वैराग प्रधान तहां देखि प्रीत है गौर भगवान। ये चैतन्य महाप्रभु हमारे संप्रदाय में यह हमारा उद्देश्य है। तो ये जीवन का वास्तविक उद्देश्य की कि अंते नारायण स्मृति। और ये नारायण स्मृति तब आएगा जब हम भगवान के अनन्य भक्त का संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब अंत नारायण स्मृति आएगा। जब हम अभ्यास करेंगे तब ये अंत नारायण स्मृति आएगा। तो हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद आप लोग सुने। मैं किसी प्रश्न नहीं लूंगा, मेरा समय थोड़ा पाबंदी है। कोई करप्शन है, कोई टिप्पणी है तो आप लोग बता सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की समवेत गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की।